नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आज न्यूयॉर्क में विकासशील और अन्य विकसित देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। डॉ जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने सिंगापुर, सेंट लूसिया और सोमालिया के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 5 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने के लिए एक बेहतरीन स्थिति में है। न्यूयॉर्क में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 250 गीगावाट से बढ़ाकर 550 गीगावाट करना है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में अमेरिका की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की आशा करता है। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने की योजना बना सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में पहचान को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि कला सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम है।
इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित विविध माध्यमों जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, सिरेमिक और फोटोग्राफी से ये स्पष्ट है कि भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कलाकार अपने विचारों, अपने दृष्टि और अपनी कल्पनाशीलता से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में कृषि का विविधीकरण देश की जरूरत है। आज नई दिल्ली में भारत जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्सपो के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत की 65% आबादी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है और सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान केवल 14% है। उन्होंने कहा कि गांवों में गरीबी और बेरोजगारी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के मंच वेब एक्स ने मीडिया, एनिमेशन और मनोरंजन क्षेत्र को सहायता देने के लिए देश भर में 7 इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ये केंद्र भारतीय जनसंचार संस्थान IIM से दिल्ली, जम्मू, ओडिशा के ढेंकानाल, केरल के कोट्टायम और महाराष्ट्र के अमरावती तथा पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,82,00,000 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इस योजना ने पात्र ग्रामीण परिवारों को रसोई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकानों के निर्माण में भी मदद की। कोलकाता में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कई इलाकों में पानी कम हो गया है, हालांकि कुछ इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। शहर के कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं सामान्य हैं और बस सेवाओं में सुधार हो रहा है। वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब स्थिर हो गई है। सभी 219 राहत शिविरों में रह रहे लोग अपने घरों को लौट गए हैं। ताइवान और फिलीपींस में पिछले 2 दिनों में शक्तिशाली तूफान रागासा ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान के आज दोपहर से शाम के बीच चीन के ताइशान और झांजियांग शहरों के नजदीक पहुंचने की आशंका है। ताइवान के हुआतलियन स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, 124 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की और उन्हें शांति, साहस और निर्भयता का प्रतीक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की है कि देवी सभी के जीवन में सकारात्मकता का संचार करे और उनकी कृपा से देश में सभी के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य आए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।